क्लास में हम आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार ताली बजा के हम राता जी का स्वागत करते हैं। आप सभी नाश्ता करके बैठे हैं, फ्रेश है? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नहीं आ रही है, सब फ्रेश है? क्योंकि भ्राता जी की क्लास बहुत पावरफुल होती है। आप बहुत चतुर होकर क्लास सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। आदरणीय भ्राता जी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में है और 1972 में आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के बेहद यज्ञ में समर्पित कर दिया। हम जो भी बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं सेंटर्स पर, वरदान स्लोगन सार सब मुरली में होता है, वो कौन लिखता है पता है? आदरणीय भ्राता जी लिखते हैं। जो हम सब बाबा के बच्चों तक वो मुरली पहुंचती है और जो पत्र पुष्प हमारे पास आते हैं सेंटर्स पर, बहने पढ़कर हमको सुनाती है, दादियों की क्लासेस, वो भी भ्राता जी सभी सेंटर्स पर भेजते हैं पत्र पुष्प, जिससे हम और अच्छी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। आप रूरल विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ आपका विशेष जो रुचि है योग में, स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि है, इस कारण से अनेक आत्माओं को योग की गहन अनुभूति पर बहुत सुंदर क्लासेस करा के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते रहते हैं। और आज भी हमारा बहुत सुंदर स्वमान है, सभी को याद है ना, हम तपस्वी मूरत आत्मा है, तो उसी पर बहुत सुंदर स्पष्टीकरण करने भ्राता जी हमारे बीच में आए हैं। जो सुंदर क्लास का टॉपिक है त्याग तपस्या और सेवा, अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा की इस तपोभूमि में जहां पर माता पिता और दीदी दादी ने तपस्या की, ऐसी तपस्या भूमि में तपस्या का अपना ही आनंद है। और हर वर्ष इस जुलाई मास में विशेष बादलों की रिमझिम के बीच सभी मधुबन निवासी भी तपस्या करते हैं, तो आप सबको ये गोल्डन चांस इस महीने में मिला है। ये हमारी दीदी मनमोहिनी जी का व्यक्त मास है। दीदी मनमोहिनी को किसने किसने देखा है, काफी हैं इसमें, पुराने हैं। दीदी 28 जुलाई 1983 को अव्यक्त हुई। इस जुलाई मास में हम दीदी की भी याद, उनकी भी त्याग और तपस्या का वर्णन करते हैं। जुलाई मास के बाद फिर अगस्त और दादी जी का मास आता है, वो भी स्मृति मास। साकार में भले माता पिता की सबने पालना नहीं ली, लेकिन दीदी दादी की पालना जो मिली इस मधुबन वरदान भूमि में, उनकी त्याग और तपस्या जिससे सेवाओं की इतनी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, मैंने भी अपनी नजरों के सामने दोनों की त्याग और तपस्या में जीवन देखी है। सुना होगा शायद इतिहास यज्ञ का, दीदी एक बहुत धनाढ्य परिवार से थी। उनके भाई का एक हॉस्पिटल बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल के नाम से चलता है और सिंधी समाज में बहुत नामी ग्रामी मुखिया परिवार था, लेकिन एक धक से सब कुछ त्याग करके, दीदी वैसे शादी हो चुकी थी, बचपन में ही शादी कर देते थे तो छोटी आयु में ही शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी दीदी ने जब बाबा मिला, दीदी और उनकी लौकिक बहन शील इंदिरा दादी बॉम्बे में रहती थी गाम देवी में, और उनकी लौकिक माँ क्वीन मदर, एक ही परिवार से तीनों लोग एक धक से मधुबन यज्ञ में समर्पित हो गए और इनकी और एक चचेरी बहन थी, वो भी दो बहनें और माँ के साथ आ गई। तो ये तीन तीन के दो गुट जब परिवार से निकले और मुखिया परिवार से निकले तो सिंध में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या क्या, कौन सी संस्था है, क्या दादा ने किया जो ये सब अपने अपने घर बार को त्याग करके, इतना सब सुख साधन सुविधाएं छोड़ करके एक आश्रम का जीवन व्यतीत करने जा रही है। वहां का खान पान, वहां का फैशन, वहां की सुविधाएं, सब कुछ प्राप्तियां होती ही एक धक से त्याग किया। लेकिन आप सब जानते हैं त्याग का आधार है वैराग्य। जब तक किसी को वैराग्य नहीं आता तब तक त्याग संभव नहीं है। जब उन्हें वैराग्य आ गया कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं, इस दुनिया में कुछ भी अभी रहना नहीं है और हमारे लिए वो नई दुनिया परमात्मा बना रहे हैं, निश्चय हुआ और निश्चय के साथ बाबा ने अनुभूतियां कराई। बहुत सी दादियों ने बाबा के साथ साथ इस कलयुगी सृष्टि के विनाश का दृश्य और आने वाली सतयुगी दुनिया को देखा, अनुभव किया कि ये दुनिया अभी आने वाली है और ये जाने वाली है। वैराग्य आ गया बेहद का और उस वैराग्य ने एक धक से सब कुछ छुड़ा दिया। विकारों का भी संन्यास हो गया, साधनों का, सुविधाओं का कोई चीज की परवाह नहीं की, संबंधों का भी एक धक से त्याग कर दिया। और बाबा के घर में आए तो त्याग तपस्या की, प्रैक्टिकल जीवन व्यतीत की। भले बाबा ने अपनी लौकिक संपत्ति से बहुत प्यार से पालना दी, 14 साल तक ओम मंडली का पिस्ता बादाम गाया हुआ था कि यहाँ तो ओम मंडली में सभी पिस्ता बादाम खाते हैं। माना दुनिया में बहुत हंगामे थे उस समय, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में बहुत हंगामे थे, लेकिन बाबा ने उनको पता ही नहीं चलने दिया कि बाहर क्या हो रहा है। 400 लोगों की पालना एक ही भवन में रख करके कराची के अंदर की, और उस पालना में जो त्याग और तपस्या का प्रैक्टिकल पाठ दादियों ने पढ़ा, तपस्या बाबा ने हम सबको कराई, एक बाबा दूसरा न कोई। कल टीचर्स की मुरली आपने सुनी होगी, त्याग और तपस्या पर बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। एक बाबा के सिवाय कहीं पर भी बुद्धि न जाए, ये प्रैक्टिकल उनकी तपस्या थी। और दूसरी तपस्या की इस शरीर से आत्मा डिटैच होकर के रहे, तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारे जीवन तपस्वी जीवन है। और त्याग है देह अभिमान का, साधनों का, सुविधाओं का। जो बाबा ने कहा ये तो सब साधन आपको, आपकी दासी प्रकृति दासी है, ये तो आएंगे ही, लेकिन अनासक्त भाव से इनको यूज करना है, खूब अच्छी तरह से यूज करो, कार्य में लगाओ, लेकिन फंस करके नहीं। देह अभिमान का जितना त्याग होता जाता है उतना आत्म अभिमान स्थिति की तपस्या सहज हो जाती। तो बाबा ने प्रैक्टिकल ये अभ्यास खुद किया, किसी भी प्रकार का देह अभिमान नहीं कि मैं इतना पैसे से, इतना धन धान्य संपन्न परिवार से हूँ, ऊंचे परिवार से हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हीरे जवाहरात का इतना अच्छा बिजनेस बाबा का। और जब यज्ञ में आए तो उनकी त्याग में जीवन देखने जैसी थी। बाबा खुद बैठकर अपने हाथों से कोयला छान करके उसका बूरा निकाल करके, کوئلے کا جو چورا ہوتا تھا اور یہاں مدھوبن میں گائے تھیں تو گایوں کا گوبر اور چورا ملا کر کے اتنے بڑے بڑے گولا بناتا تھا اور بابا کے ساتھ بچے بھی مدد کرتے تھے. جب میں مدھوبن میں آیا ہوں تو بھی وہی پرتھا چالو تھی 71 میں. بابا کے ابیکت ہونے کے بعد بھی یہاں دو بیل تھے, بیل گاڑی تھی کیونکہ یہاں تک گاڑیاں نہیں آتی تھی, اور کچھ گائیں بھی تھی. دھیرے دھیرے ان کو نکالا بابا کے بعد, پھر شانتی ون میں تو بھی بہت ہیں. بابا نے وہ تیاگ کیا ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل دیہی مانی استھتی کیا ہوتی ہے, وہ کر کے سکھایا سب کچھ. بڑے نشے سے امنگ اتساہ سے جب وہ گولا بناتے تھے اور ایسے ہاتھ میں کر کے ایسے کرتے تھے, دیکھو بچے بابا کے ہاتھ میں وشو کا گولا آنے والا ہے, نئی دنیا کا گولا آنے والا ہے, ستیوگ آنے والا ہے. کہتے تھے بچے کوئی سامنے آ جائے نا, ساکار بابا کے شبد تھے, تو میں ان کو درشٹی دوں تو ان کو شری کرشن کا ساکشاتکار ہو جائے. کاج اتنا سادھارن لیکن نشہ کتنا اونچا, کہ میں تو وہی فرسٹ پرنس ہوں, شری نارائن کی آتما ہوں, ابھی بیگر ہوں کل پرنس بنوں گا. تو بابا نے وہ بیگری لائف کیا ہوتی ہے اس کا خود پریکٹیکل کر کے سکھایا. تیاگ میں جیون, بابا کو جب یہ باجو والا جو بلڈنگ ہے نا, اس کا نام ہوائی محل ہے. پانڈو بھون میں دو محل, دو بلڈنگ جو ہیں بہت سندر نام سے بابا نے بنوائی. ایک ہوائی محل بنایا اور ایک ایروپلین بنایا. ایروپلین دیکھا ہے معلوم ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے نہیں دیکھا؟ یہاں جو جھنڈا لگا نا اوپر مرگول کے بیچ میں, یہ مرگول والی بلڈنگ کا نام ایروپلین ہے, اور یہ جو بلڈنگ باجو میں ہے اس کا نام ہے ہوا محل. اس میں ہوا بہت اچھی آتی ہے, ادھر سے ادھر کراسنگ بہت اچھی ہے. تو جب بابا نے پہلے بلڈنگ بنائی ہوائی محل کی, رہتے اپنے پرانے مکان میں تھے. یہاں پر تو راجاؤں کا گھڑسال تھا, گھوڑے پالتے تھے راجائیں لوگ. یہ پوکھران راجا کی کوٹھی باجو میں ہے, یہاں پر ان کا یہ بنگلو تھا, اور پوکھران راجا سے بڑی مشکل سے لکھا پڑھی کر کے زمین لی. تو جب زمین لے لی گئی نا, تو اس کے بعد اس کو ہوش آیا کہ ارے اتنی بڑی زمین اور میں نے اتنے سستے دام پر کر دی. تو اس کو جب ہوش آیا تو ویرودھ کرنے لگا کہ میں تو نشے میں تھا اور میرے سے ایسے لکھا لیا, تو بہت ویرودھ ہونے لگا. تو بابا کے یہاں پر بہت سارے بچے اور بھی گپت دھیان میں بھلے نہیں تھے لیکن وہ بڑے مددگار تھے, تو وہ کھڑے ہو گئے. بابا تو بولتا نہیں کچھ, بچے تو سب بہنیں تھیں, ادھک بھائی تو تھے ہی نہیں یہاں. تو وہ آ گیا, کہتا میں پہرا دوں گا, دیکھیں کون بابا کو آنچ لانے دیتا ہے. تو وہ پریوار یہاں سندھی پریوار تھا, سندھی پنجابی, ابھی ان کے بچے ہیں, پریوار ہے, لیکن انہوں نے اس سمے بہت ہمت سے اس بھون کو, پانڈو بھون کو خریدنے میں مدد کی, اور یہاں پر یہ ہیڈ کوارٹر بنا. پہلے یہاں دوسرے کوارٹرس ہیں, کوٹا ہاؤس ہے, دھولپور ہاؤس ہے, بھرت پور راجا کی کوٹھی ہے, وہاں سے ہوتے ہوتے چوتھا استھان یہاں ملا. تو یہ جب سے استھان ملا تو یہاں پانڈو بھون بنا, اور یہ پرانا مکان جو ابھی بھی وہی ہے, تین سیٹ وہی ہے, لیکن اس کا تھوڑا روپ باہر سے چینج کیا ہے. بابا اسی میں رہے, دیدی اسی میں رہی, مما اسی میں رہی, اور اتنا تیاگ میں جیون. ہم لوگ جب آئے نا تو پہلے یہاں ٹھنڈی بہت پڑتی تھی, ابھی تو بہت کم ہو گئی ہے. بھیگری پارٹ تھا, تو ایک بار دیدی نے مجھے بلایا کہ دیکھو یہاں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے, تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے میں تم کو ایک سویٹر دیتی ہوں, بہت گرم سویٹر, لیکن اس کا رنگ کالا تھا, بہت کالا, بلیک کلر کا تھا. تو جب میرے کو دیا تو میں سوچنے لگا, بولا کچھ نہیں, ایسے سوچنے کہ سوچو نہیں, کالا ہے اس لیے سوچا ہوگا, سنکلپ چلا رہے ہو, اس کو اندر پہننا, ڈریس کے اندر پہننا, اوپر سے نہیں پہننا, اندر پہننا, ٹھنڈی نہیں لگے گی. کیوں, بہت بگری پارٹ تھا اس سمے بھی جب آئے ہیں ہم, بہت تیاگ میں جیون, کوئی بھی پرکار کا کوئی پھل بھی کھاتا تھا تو لکھت میں دینا پڑتا تھا اتنا پھل چاہیے. تو تیاگ کی جیون ہم لوگوں نے دادیوں کی دیکھی ہے, کیسے کیسے انہوں نے یگیہ کو سنبھالا اور چلایا. کوئی بھی پرکار کے سادھن نہیں, پہلی پہلی کار آئی, کار ایک نے دی, ایک ماتا نے چند کی تھی, پونا میں رہتی تھی, تو ایمبیسیڈر کار اس سمے تھی, نہیں فیٹ تھی پہلی کار. تو جو فیٹ آئی تو اس کے بعد اس کار کا ادگھاٹن بابا سے کرانا ہے, بابا سے ادگھاٹن کرانا کار کا. پہلی کار آئی مدھوبن میں, پہلے تو تھی کراچی سے کچھ گاڑیاں لے کے آئے تھے, لیکن اس بیگری پارٹ میں سب بیچنا پڑا, کچھ بھی نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. جب بیگری پارٹ چلا نا 51-52 میں, تو جتنا سامان لے کر کے وہاں سے آئے تھے, لائے سب کچھ تھے, لیکن یہاں تک سلائی مشینیں بھی بیچنی پڑی, کچھ نہیں بچا تھا. تو جب پہلی پہلی کار آئی تو دیدی دادی اور ایک چلانے والا ڈرائیور بولا بابا سے ادگھاٹن کرائیں گے, گلزار دادی کو بیچ میں بٹھایا اور گاڑی کو ادگھاٹن میں لے کے گئے, یہاں سے باہر لے کے گئے اور جو ہنی مون پوائنٹ انہادرا پوائنٹ ہے وہاں کھڑا کر دیا. اور وہاں کھڑا کر کے دیدی دادی نے گلزار دادی کو بولا یہیں پر بابا کو بلاؤ اور گاڑی کا پہلے ادگھاٹن کرے, اس کے بعد گاڑی چلے گی. گاڑی پہلی آئی تھی, گلزار دادی تو اتنی سیدھی سادھی, دادی کو جو بولو ہاں جی. دادی کار میں بیٹھے بیٹھے بابا کے پاس چلی, بابا آ گئے. بابا آئے, دادی نے بابا کو گاڑی سے اتار کر کے پوری گاڑی گھمائی, بابا یہ گاڑی ملی آپ کو, یگیہ میں پہلی گاڑی آئی ہے. بابا نے کہا بچے ٹھیک ہے, بہت آئیں گی, بہت آئیں گی, وردان دے گیا. تو تیاگ میں جیون سے کیسے بھاگی بنا, کیسے آگے بڑھے ہیں, یگیہ کا بہت بڑا اتہاس ہے. اور اس اتہاس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پلر جو مضبوط ہوتا ہے نا بلڈنگ, اس پر بہت اچھی کھڑی ہوتی ہے. یہ جو فاؤنڈیشن ہے تیاگ کا, تپسیا کا, اس سے آج ہم سب دیکھ رہے ہیں یگیہ کتنا فلیبھوت آگے بڑھا ہے. بٹ ورکش کے اندر بیج بڑا بہت چھوٹا, اس کا تنا اس سے بھی اچھا, لیکن اس کے بعد جب سکھائیں نکلی ہیں تو آپ دیکھو آج کیا ہے یہ سنستھا, کیا ہے یگیہ. لیکن دادیوں نے بہت گہرا تیاگ کیا, نہ مان کی, نہ شان کی, نہ مہیما کی, میں آگے تو آگے, میں بڑا تو چھوٹا, اس میں بھی تیاگ چاہیے. میں کیا آپ کو بتاؤں دادی دیدی کی کہانی. یہ چھوٹا حال تھا, ایک بھی کرسی نہیں تھی ہمارے یہاں پانڈو بھون میں, ایک بھی کرسی نہیں تھی. دیدی ایج بڑی ہوتی گئی تو تھوڑا پیر میں تکلیف ہوئی, ویسے دیدی ایسے بیٹھتی تھی, دادی موڑ لی گدی پر سناتی تھی, گدی تو ابھی یہ ہو گئے نا چوپے ہو گئے, وہ گدی ایسی تھی, ابھی تو ہٹ گئے سب. تو اس گدی پر بیٹھ کے دادی مرلی سنا رہی ہے اور دیدی سامنے بیٹھ کے نوٹس لے رہی ہے, اور نوٹس لینے کے بعد پورے کلاس کو ریفریش کیا, نہ کوشچن آنسر نکالتی تھی اور پھر اس کے بعد سب کو فیل کرتی تھی. تو جب میں آیا تو دیدی دادی نے مجھے کہا کہ تم ہندی والا ہے نا, یو پی سے ہے, تم بابا کے ساتھ بیٹھ کے نوٹس لیا کرو, بابا ہندی مرلی چلاتا ہے. تو میں گلزار دادی جہاں بیٹھتی, بابا کو جہاں بلاتے تھے, کیونکہ بابا اسے گدی پر آفیسل نہیں آتا تھا, اپنے حال کمرے میں بھی گدی پڑی ہے نا وہاں پر گلزار دادی کو بٹھا کے بلا لیتے تھے, پھر وہ ہسٹری ہال ہے وہاں پر بھی نیچے زمین پر گدی لگا دیتے تھے, وہاں بابا آ جاتے تھے تو ہم بازو میں بیٹھ جاتے تھے آ کر کے. چھوٹے بھی تھے اور ہندی اچھی تھی, جو بابا جتنا بولتا تھا میں لکھتا رہتا تھا رات بھر, کیونکہ وہ پارٹ بابا کا رات بھر چلتا تھا. شام کو سات چھ ساڑھے چھ سات بجے بابا آ گئے, صبح سات آٹھ بجے بچوں سے مل رہے ہیں. तो हम सारी रात बैठे रहते थे, बाबा को देखते रहते, बाबा जितना जिसको जो बोलता था सब लिखते थे हाथ से। तो जब लिख लेते थे, दादी दीदी तो बैठती नहीं थी, उनको तो बाबा कहते थे आप रेस्ट करो, बाबा बच्चों से मिलेगा, और फिर जब विदाई देने का समय आए तब आ जाना। तो दीदी दादी बैठती नहीं थी और मेरी ड्यूटी लगाई रात भर बैठने की। तो दूसरे दिन जब बाबा चले जाते, दूसरे दिन मुझे बुलाती थी कि आज रात भर बाबा ने क्या बोला। तो मैं उनकी निर्ममता सुनाता हूँ कि इतनी बड़ी दीदी इतनी बड़ी दादी मेरे को गद्दी पर बिठा दिया और खुद नीचे दोनों बैठ जाए। अब जब मैं बैठता था तो मेरा हाल क्या होता होगा आप समझ सकते हो। एक तो मैं गांव का, मैं इनको कोई जानता भी नहीं, इतना कोई परिचय नहीं, लेकिन उनकी भावना, उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य, मैं गद्दी पर बैठूं सुनाने के लिए टीचर और वो मेरे स्टूडेंट बन के बैठे, बड़ा डर लगता था, ऐसे हाथ कांपने लगते थे। फिर भी नहीं नहीं तुमको सुनाना है, बाबा ने क्या बोला वही सुनाना, पढ़ के सुनाओ। एक घंटे का क्लास चलता था, तो मुझे वो रात भर जो लिखता था वो टाइप करके या पेयर करके जाता था, फिर रात को सुनाता था। तो मैं कह रहा था कितनी बड़ी महान हस्तियां, किसी भी प्रकार का मैंपन नहीं, पोस्ट का अभिमान नहीं, बड़प्पन का अभिमान नहीं, इतनी निर्माण चित, किसी भी प्रकार का देहमान नहीं। देहमान की बात अगर प्रैक्टिकल में बताऊं, जब शुरू में यहाँ पर, शायद आप लोग यूपी वाले जानते होंगे, आप सब तिनसुखिया वाले भी जानते होंगे, निवाड़ की चारपाई थी, निवाड़ समझते हैं, ये निवाड़ नहीं आजकल की जो आती है नायलॉन वाली, वो कपड़े वाली थी, काटन वाली। और उस काटन वाली निवाड़ में ऐसी बरसात के अंदर खटमल बहुत हो जाते, ये गीली हो जाती, सूखती नहीं, तो दो महीने तक वो गीली रहती थी तो बहुत खटमल हो जाते थे। तो जब धूप निकलती थी तो दादी हमारे साथ आती, सब चारपाइयां खोलो, निवाड़ निकालो इसकी, और निवाड़ निकाल करके पूरा गरम गरम पानी सोडा और साबुन के अंदर डाल करके उसकी वो हम धुलाई करते थे। अब धुलाई करके सुखा करके फिर उसके गोला बना करके चारपाई बुननी है। अब बुनने के लिए थे ही हम कितने मधुबन में 30-40 लोग, तो एक तरफ दादी खड़ी होती थी, एक तरफ हम खड़े होते थे, और वो ऐसे खींचती थी तो हम ऐसे खींचते थे, कहती थी और जोर लगाओ और टाइट करो, ऐसी जीवन त्यागमय थी। उनको ये अभिमान नहीं था कि मैं हेड हूँ संस्था की, मैं बड़ी हूँ, ये तो कल के लड़के आए तो सब ये कर सकते हैं, नहीं, सिखाया, करके सिखाया। और बहुत त्याग से, बहुत स्नेह से, कि कहीं भी कोई को अभिमान ना आ जाए कि मैं बड़े घर का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को ये काम कैसे करना चाहिए, ये कैसे करूँ मैं। कोई भी कार्य छोटा यज्ञ का नहीं है, कोई भी काम मिले बहुत प्यार से, दिल से, अपना घर समझ के करो। तो ऐसे ऐसे हमने देखा कि उन्होंने इतना त्याग करके इतनी तपस्वी जीवन जी, तपस्या के लिए कहती थी रात को 2 बजे आज हम सब योग करेंगे। कोई सैटरडे आए, सैटरडे आया शाम को ऐसे अनाउंस होगा कि जिनको बहुत अच्छी रुचि है योग के अंदर, ऐसे नहीं आकर के सो जाओ बैठ करके, यहाँ पर गद्दी लगाते थे, गद्दी नीचे, कुर्सियां नहीं, सोफा नहीं, लेकिन गद्दियों पर सब बैठ जाते थे आके, 2 बजे से 5 बजे तक कोई हिलेगा नहीं। दादी आगे बैठ के थोड़ी कमेंट्री देती थी, धीरे एक दो लाइन सुनाई और फिर सब योग में बैठ गए। ऐसे योग तपस्या के बल से यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। कैसे यज्ञ को निर्विघ्न रखा जाए, कैसे इसकी वृद्धि की जाए, कोई भी प्रकार की बातें आई, क्योंकि जब संस्था की स्थापना होती है तो रुकावटें बहुत आती, शुरुआत के अंदर बहुत विघ्न आए और हर जगह पर विरोध सहना पड़ता था। ऐसे नहीं सहज स्थापना हुई, जगह 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 पर इसका विरोध, जगह जगह पर क्या है सनातन धर्म के लोग नहीं है, ये तो अलग प्रकार के, शायद ड्रेस इनकी ऐसी है, क्रिश्चियंस कहीं से आ गए हैं, ये टीका नहीं लगाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये बाल नहीं ढकती बहने, ऐसी ऐसी बातें लेकर के बहुत विरोध करते थे। जहां भी सेवा शुरू होती थी वहां पर पहले तो बहनों को बहुत सुनना और सहन करना पड़ता था, बहुत सहन करना पड़ता था, यहाँ तक सन्यासी लोग, हमारा मेला लगता था, मेले के अंदर कुंभ मेले में बाबा हमेशा कहता था बच्चे अपना पंडाल लगाओ, अपनी प्रदर्शनी होनी चाहिए। हमको गवर्नमेंट ने प्रदर्शनी का पंडाल दिया, हमारी प्रदर्शनी लगी है और सामने माइक लगा करके सन्यासी लोग ब्रह्मा कुमारियों को गाली दे रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, ये कहां से आ गए, ये तो भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानते हैं, ये तो श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं, कहते गीता का भगवान शिव है, ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, इनको उखाड़ फेंको, इनको भगा दो यहां से, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। और बाबा के पास समाचार आता था तो बाबा बड़ी मस्ती से मुरली चलाता था, अरे बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, ये सब हमारे मित्र हैं, तुम नहीं चिंता करो, तुम परवाह नहीं करो, आज ये गाली दे रहे हैं ना, कल गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, जितनी गालियां दे रहे हैं उतने फूल चढ़ाएंगे। अब बाबा के वहां माँ वहां के चलते थे, बहनें चुप सुन लेती थी, भाई बोलने दो बाबा कह रहा है कुछ नहीं करना। तो आज वो समय आ गया, अभी दिख रहे हैं फूल गिनती के चाहते गिन गिन करके, क्या संस्था थी, कहां से कहां पहुंचाया बाबा ने, लेकिन फाउंडेशन त्याग था, कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक एक बहन को कोई तरबूजा एक बार दे गया, सुना होगा कहानी, एक तरबूजा एक बहन को दे गया, बड़ा कानपुर गंगा के किनारे के तरबूजा बहुत प्रसिद्ध थे, तो वहां बहने रहती थी, तो बड़ा तरबूजा दिया, तो बहनों ने सोचा अरे बाबा के पास तो कभी तरबूजा आता नहीं है, हम यहां से भेज दें, हम कहां खाएंगे, दो बहने चार बहने कैसे भेजें उनको पता नहीं, एड्रेस कैसे भेज डाले जाता है। उन्होंने क्या किया, चाकू उठाई, तरबूजे पर लिखा ब्रह्मा कुमारी इज माउंट आबू राजस्थान, और वो तरबूजा लिख करके और कहती एक भाई को जा तुम ट्रेन में डाल के आओ, अब आबू की तरफ आने वाली ट्रेन में वो तरबूजा रख दिया भाई ने भी, न बुकिंग न कोई न कुछ नहीं, कोई ठप्पा नहीं, कोई टिकट नहीं, और ट्रेन में ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू लिखा हुआ है, वो लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आ गया। बाबा के पास आया, अरे बच्ची तरबूजा आया है, किसने भेजा कुछ पता नहीं, काम एड्रेस नहीं, अब ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में आ गया। बाबा ने कहा हाँ जरूर उसी बच्ची ने भेजा होगा, उसको पता ही नहीं कैसे भेजना चाहिए, वो इतनी भोली है, इतनी सच्ची है। तो ऐसा ऐसा संस्था कैसे त्याग में जीवन जी करके बिना टिकट के भी बहनों ने बहुत सेवाएं की हैं, ऐसे ऐसे त्याग करके तपस्या करके, तो हम देख रहे हैं आज हम उसका फल खा रहे हैं, सेवाओं की वृद्धि इसी आधार से हुई है। लेकिन त्याग के लिए कल जो बाबा कह रहे थे ना कि हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेना, कैसी भी परिस्थितियां आए, आएंगी सबके आगे, उस समय इनके आगे आर्थिक रूप से परिस्थिति आई, फिर परिवार की तरफ से आती है, शरीर की तरफ से आती है, परिस्थितियां हर तरफ से आती हैं। जहां संगठन होते हैं, जहां 10-15 भाई बहने रहते हैं, जहां 2-4 बहने भी इकट्ठी रहती हैं, संस्कारों का टकराव, इधर उधर की बातों की बातें आती हैं, संगठन है, लेकिन उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, मोल्ड कर लेना, अपनी नेचर को इजी बना लेना, ये है देह मन का त्याग। अगर ये त्याग करना आ जाए तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, इसने ऐसा कह दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम मूड को खराब कर लेते। बाबा कहता जहां परिवार है, जहां रहना है वहां सहना पड़ता है, जहां रहोगे वहां कुछ न कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कहीं सब एकदम मंदिर है, घर है, सब जगह हम ऐसे रह सकते हैं, किसी के बीच में हम 2-4 जने रहेंगे, वहां कुछ संस्कार होंगे, कुछ स्वभाव होंगे, कुछ आदतें होंगी, कोई महिमा चाहेगा, कोई कुछ अपेक्षाएं व्यक्ति की अपनी अपनी होती हैं। अगर उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो टकराव की स्थिति बनती है, और टकराव की स्थिति में अगर हमने उसको नहीं सहन कर पाया तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ऐसे समय पर कुछ मान का, कुछ शान का, कुछ स्थान का, कुछ किसी चीज का, सेवाओं की रुचि का भी त्याग करना पड़ता है, और अगर वो त्याग करके अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने नेचर को इजी बना लिया, तो तपस्या सहज होगी। अगर त्याग नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसके संकल्प विकल्प, ये हुआ ऐसा हुआ, तपस्या में सबसे बड़ा बाधा ये संकल्प ही डालते हैं। संकल्प अगर एकाग्र नहीं है, संकल्पों में अगर बाबा से जिगरी प्यार नहीं है, तपस्या होगी? योग लगेगा? इसलिए जरूरी है बहुत दिल का जिगरी प्यार बाबा से, जिसको बाबा कहता है लगन की अग्नि। अगर तपस्वी जीवन बनानी है तो बहुत जिगरी लगन बाबा के साथ चाहिए, बाबा के यज्ञ से चाहिए, बाबा की सेवाओं से चाहिए। जैसे अपनेपन की फीलिंग आए, ये सब हमारा है, हम अपने बाबा के घर के बच्चे हैं, और जब वो प्यार उमड़ता है, बाबा के प्रति जिगरी प्यार रहता है, तो योग सहज हो जाता, योग लगाना नहीं पड़ता। हम बाबा के बच्चे योग लगाने वाले योगी हैं ऐसा अनुभव नहीं हो, हमारी जीवन योगी जीवन है। खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, किसके लिए हैं? तो बाबा कहता है जिसमें दृढ़ता है, जिसमें एकाग्रता है, जिसमें लगन है, वही तपस्वी है। अगर लगन की अग्नि नहीं प्रज्वलित है तो तपस्या नहीं हो सकती। अगर संकल्प में दृढ़ता नहीं है, कुछ भी हो जाए ये करना ही है, तो तपस्वी नहीं बन सकते। दृढ़ता का नाम तपस्या है। जैसे उन लोगों ने तपस्या की, भले आसुरी वृत्ति वाले थे, राक्षस लोग थे, लेकिन उन्होंने भी, वो जानते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे तपस्या करनी है, और वो तपस्या जो की उन्होंने, उसके आधार से आपने सुना होगा वाल्मीकि ने तपस्या की, एक डाकू से संत बन गया, और इतना कुख्यात डाकू था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन जिस दिन उसने महसूस किया, उसको संतों ने महसूस कराया कि जब तुम कर रहे हो, उसका भोगना कौन भोगेगा, क्या परिवार भोगेगा जिसके लिए कर रहे हो, तो उसको महसूस हुआ, और महसूस होते ही उसने अपने परिवर्तन का संकल्प कर लिया कि हम तपस्या करेंगे। तो कहते हैं जब वो तपस्या में बैठा तो खाना पीना सब छोड़ करके एकाग्र होकर के बैठ गया, और ऐसा बैठा जो दीमक ने उसके शरीर के ऊपर बाल जैसे घर बना लिए, हिला नहीं। वो तपस्या किया, उसके बाद उस पर भगवान प्रसन्न हुए और उसको सिद्धि मिली, वो एक बहुत बड़ा संत बना, बहुत बड़ा लेखक बना, जो आज इतनी बड़ी रामायण लिख डाली, वाल्मीकि रामायण लिखी। लेकिन उसके लिए उसने तपस्या की, उसने कितना बड़ा त्याग किया, सब चीजों को त्याग करके बैठ गया तपस्या में। बाबा कहता मैं अपने बच्चों को कोई इतना हट क्रिया नहीं सिखाता, आप बच्चों की तपस्या है दृढ़ता का संकल्प। जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं, जो हमारे नियम, उनको पालन करने के लिए हम दृढ़ता का एक संकल्प ले लें, कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर में भी कई प्रकार के बीमारियां लग जाएं, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कहे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपनी जीवन तपस्वी बना करके रहनी है, एक बाबा के प्रभाव में रहना है। कोई भी आत्मा मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, अगर ये दृढ़ता से संकल्प कर लो तो यही तपस्या है, किसी भी आत्मा के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना। कोई कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी धनवान हो, कितनी भी सहयोगी हो, अपना भाग्य वो बना रही है, मुझे पर्सनल उससे कुछ नहीं चाहिए। व्यक्तिगत किसी देहधारी के साथ अगर जरा भी संबंध बनाया तो तपस्वी जीवन नहीं बन सकती। तपस्या का आधार हमारी मानसिक प्योरिटी है। जब तक हमारी पवित्रता स्थायी नहीं है, एक के तरफ हमारा डिग्री प्यार नहीं है, दिल का प्यार नहीं, तब तक तपस्या संभव नहीं है। तपस्या हम कोई बैठ करके, एक टांग पर खड़े होकर के, हट करके, नाक कान बंद करके नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जीवन तपस्वी है। खाते पीते रहते सब बातों से उपराम है, न्यारे हैं, निर्लिप्त हैं, वो हमारी तपस्या है। इसलिए तपस्वी जीवन जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर दृढ़ता है, जिसके अंदर एकाग्रता है, बैठ जाओ ऐसे बिल्कुल हलचल समाप्त हो जाए। अगर हलचल है तो चेक करो किधर जा रहा है, ये संकल्प जा कहां रहा है, क्यों हिल रहा है। हम बैठे हैं बाबा की याद में, उसकी शक्ति लेने के लिए, और ये मुझे क्यों भटका रहा है, किधर जा रहा है, मारो नहीं। उस पर बंधन नहीं डालो, लेकिन उसको देखो तो किधर जा रहा है। योग का समय है, क्लास का समय है, प्राप्ति का समय है, अनुभूति का समय है, और इस अनुभूति के समय में ये भटक रहा है। किस लिए? कहां कहां इसकी रस्सी बंधी हुई है? सूक्ष्म रस्सियों को चेक करो, बहुत गहरी रस्सियां हैं। लोहे की जंजीरें तो दिखाई देती हैं, देख कुमारा संबंधों को छोड़ा, सबको खत्म किया, लेकिन कई ऐसी सूक्ष्म जंजीरें बंधी हुई हैं। कोई को अपनी सेवा का नशा है, कोई को अपनी पोस्ट का नशा है, कोई को अपने पैसे का नशा है, कहीं 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 न कहीं सूक्ष्म रस्सियां सूक्ष्म लगी रहती है। मन वहीं भागता है, जिधर कोई आकर्षण है वहां पर वो जाता है, और उसको चेक कर लो तो एकाग्र हो जाओगे, रुक जाएगा। रोकना माना शून्य नहीं करना है संकल्पों को। हमारी संकल्प की विधि से योग है। संकल्प को हम निर संकल्प नहीं बनाते, हमारी समाधि निर संकल्प समाधि नहीं है, निर्विकल्प समाधि है। जो विकल्प हैं, बुरे संकल्प हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, जो हमारे काम के ही नहीं है, हम उनको रोक लेते, उनको नहीं चलने देते। बाकी अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करते इस साकार वतन से, अव्यक्त वतन, मूल वतन, वैकुंठ वतन, सबकी सैर करते हैं। संकल्प को रोकते थोड़ी हैं। ये तपस्या है। तपस्वी आत्माएं अगर कहें नहीं तुम दही चल, रुक जा, संकल्प को चलाना बंद कर दो, अनुभूतियां ही नहीं होंगी, क्या अनुभूति करोगे? अनुभव करने के लिए संकल्प एक साधन है, एक वाहन है, और उस साधन को ही आपने डेट कर दिया, उसको रोक दिया, तो अनुभूतियां कैसे होंगी? इसलिए तपस्वी आत्माएं अपने मन के साधन को बड़ा अच्छा बना लेती, और उस साधन से, अंतर मन वाहन से, इस साकार वतन से, अव्यक्त वतन और मूल वतन की सैर करती। जब तक आप बाबा के पास पहुंचे नहीं है, तो बाबा की शक्तियां आपके अंदर कैसे आएंगी? तपस्या के अंदर आप इतनी एकाग्रचित होके बैठो कि आत्मा जो है, जैसी है, उसका भान आना चाहिए। अनुभव हो कि मैं ऐसी तपस्वी आत्माएं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। आत्मा निकल के कहीं नहीं जाती, आत्मा चली गई ऐसा भी नहीं है। ट्रांस में जब जाती दादियां तो भी आत्मा नहीं निकल के जाती, भले कहती मैं बाबा के पास गई, लेकिन गई का मतलब ये नहीं है कोई शरीर से चली गई, आत्मा निकल के चली गई। कैसे गई? बुद्धि से गई। मन का यहां का पार्ट मर्ज हो गया और वहां कैसी निमर्ज हो गई। अनुभव कर रही है कि हम बाबा के सामने पहुंचे हैं, शरीर सहित पहुंचे हैं, उस अनुभव के आधार से ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त रूप में रूहान कर रही है। लेकिन आत्मा निकल के शरीर से चली गई ऐसा तो नहीं है ना? अगर निकल जाएगी तो शरीर तो उसी समय मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन बुद्धि बल से मन के इस संकल्प के स्विच को, इस साकार सृष्टि के स्विच को स्टॉप किया और उस अव्यक्त स्विच को ऑन कर लिया। अब यही है हमारा योग, यही है हमारी तपस्या। आप यहां बैठो लेकिन इस साकार जगत के संकल्पों को ब्रेक लगा दो, इसको नहीं सोचना है, जो हो रहा है सब ठीक है। अगर इसमें गए और इसको सोचने लगे तो तपस्वी जीवन का अनुभव नहीं होगा, सूक्ष्म वतन मूल वतन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए नॉलेज फुल बन करके, वैसे भी आप देखो तपस्या हमेशा या तो वृक्ष के नीचे बैठ के करते हैं, या तो कुटिया के अंदर बैठ के करते हैं, या कोई ऐसी पहाड़ी पर चले जाते, एक आसन बिछा करके उस पर बैठ के करते। ये सब हमारी इस संगम की तपस्या के कई रूप फॉलो किए गए हैं, संतों ने, सन्यासियों ने फॉलो किए हैं। स्थूल वृक्ष के नीचे बैठने की बात नहीं है, ये हमारा कल्प वृक्ष जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, कल्प वृक्ष का कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे इसका अंत होगा, फुल नॉलेज फुल बनो और बैठ करके पूरी नॉलेज को स्मृति में रखो। हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान है, समझ है, हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई नया सीन नहीं है, नया दृश्य नहीं है, हर दृश्य में कुछ कल्याण है, नथिंग न्यू। जब इस प्रकार की नॉलेज फुल स्टेज है, पूरे वृक्ष की नॉलेज है, वृक्ष में हर आत्मा के प्रति नॉलेज है कि इस आत्मा का यही पार्ट है, इस पार्ट को हम बदल नहीं सकते। इसके लिए अगर हम चिंतन करेंगे तो हम अपने संकल्पों को भारी करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा, ये सिर भारी हो जाएगा, ये बदल जाए, बदलेगा कोई नहीं है, उसका अपना पार्ट चल रहा है। मैं उस पार्ट को चेंज करने का प्रयास क्यों करूं, मैं अपने पार्ट को चेंज कर लूं। तपस्वी आत्माएं फुल नॉलेजफुल हैं तब संकल्पों को ब्रेक लगा सकते। इसलिए फुल नॉलेज रखो ड्रामा की, फुल नॉलेज रखो वृक्ष की, हर पत्ते की नॉलेज, ये पत्ते हैं मनुष्य सृष्टि पर, हर एक्टर एक पत्ते के रूप में है, उस पत्ते को भी पानी मिले, शक्ति मिले, शुभ भावनाएं मिले, सकाश मिले, मैं ऐसा तपस्वी बन करके बैठूं, इतनी शुभ भावनाएं इमर्ज करो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आत्माएं मुक्त हो जाएं, इस शुभ संकल्प से योग करो, तपस्या करो, कुटिया में बैठ जाओ, भ्रकुटी आत्मा की कुटिया है, इस आसन पर मैं विराजमान हूं, मैं बहुत चमकता हुआ एक तपस्वी हीरा हूं, इस तपस्या में बैठे इस देहभान से डिटैच हो गए, इसका त्याग हो गया, एकाग्र हुए मन बुद्धि से और बाबा का अनुभव करने लगे, उसकी शक्तियों को अपने में ग्रहण करने लगे, बाबा की वो शक्तियां मेरे ऊपर आई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के विश्व में जा रही है। अनुभव करो, इस अनुभव से आप देखेंगे इस देहभान की सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तीन प्राप्तियां तपस्वी आत्माओं की प्रैक्टिकल दिखाई देनी चाहिए, अगर वो तपस्वी है तो। एक बाबा कहता उसके अंग अंग शीतल, उत्तेजनाएं खत्म, जो आवेग आवेश आलस बहुत सारे विकार आत्मा के अंदर भर गए हैं, तपस्वी आत्माएं बिल्कुल शीतल काया वाले योगी, अंग अंग सुगंधित। अगर सचमुच सच्ची तपस्या हम कर रहे हैं तो हम सब शीतल योगी बने, देखें अपने आप को, उत्तेजनाएं समाप्त हुई हैं, आवेग आवेश खत्म हुए हैं, या छोटी छोटी बात में ऐसा गुस्सा आता है, इसको मार दो, इसको ऐसा कर दो, क्या होता है एकदम सारा, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, जोश करने से बदल नहीं जाएंगे, मेरे गुस्से से चेंज होने वाले नहीं है। हर एक तपस्वी शीतल काया वाला योगी बन जाए बस। दूसरा, उसकी अंदर से बिल्कुल संतुष्टता, तृप्ति, भरपूरता, तृप्त है, भरपूर है, ऐसे नहीं मैं यहां संतुष्ट हूं, जहां हूं वहां ठीक हूं, तपस्वी ऐसा नहीं कहेगा। तपस्या के द्वारा सब शक्तियों को अपने में ग्रहण करके, सब गुणों को अपने में ग्रहण करके, सब शक्ति साली बन करके बैठता है और अनुभव करता, मैं भरपूर हूं, मैं तृप्त हूं, मुझे कोई कामना नहीं रही। ऐसी तपस्वी आत्माएं संतुष्ट मणि बन जाती। बाबा अपने बच्चों को संतुष्ट मणि बना करके माला में पिरोना चाहता है। हम सब अपनी संतुष्टता की परसेंटेज को देखें, सिर्फ कहें नहीं मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अगर मैं संतुष्ट हूं तो सचमुच मैं ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का संपूर्ण पालन कर रहा हूं। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं अपने आप को, सारे परिवार को, सर्व आत्माओं को निर्दोष दृष्टि से देखता हूं, सब निर्दोष हैं। अगर दोष देखते रहेंगे तो संतुष्ट नहीं रह सकते, प्रश्न उठेंगे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है ऐसे। संतुष्ट आत्माएं प्रश्नों से पार चले जाते हैं, तब वो प्रसन्न चित स्थिति में रहते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। अगर कोई शरीर भी ऐसा है किसी का तो भी प्रश्न नहीं है, ऐसा क्यों है मेरे साथ। कई लोग यही प्रश्न करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूं फिर भी मेरे साथ हो रहा है, प्रश्न है क्या किसी का ऐसा। ऐसा प्रश्न अगर उठ रहा है, माना हमने त्रिकालदर्शी स्टेज पर रह करके उस बात को नहीं सोचा है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी नहीं कहेंगी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानती हैं जरूर। परसों बड़ी हंसी में रमणीकता से बाबा ने मुरली में एक लाइन कही, बांधेलियां बाबा के आगे रोती हैं, बाबा मेरे को बहुत मारता है, बाबा ने बच्ची तुमने भी कभी मारा होगा, ऐसे थोड़ी मारा आकर के तेरे को, कितनी रमणीकता से उत्तर दिया था परसों की मुरली में बाबा ने। कुछ तो किया होगा जिसके कारण हमारे सामने आ रहा है और अंतिम समय में आएगा, फिर थोड़ी आने वाला है, इसी समय सब चुप तो करना है। अगर कोई भी प्रकार की हलचल दिखाई देती है संगठन में, परिवार में, धन में, संबंध में, शरीर में, समझ जाओ कुछ न कुछ हिसाब किताब थे वो पूरे हो रहे हैं, चुप तो हो रहे हैं। बहुत लाइट होकर के, हल्के होकर के उसको पूरा कर दो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे में ना अपना टाइम वेस्ट करो ना दूसरे के पास जाओ। बहुत लोग अपना भी वेस्ट करें और दूसरा का भी वेस्ट करते। जब हर आत्मा निर्दोष है इस ड्रामा के अंदर, बाबा किसी का दोष नहीं देखता, मैं क्यों किसी का दोष देखूं? तो अपने को भी दोषी नहीं ठहराओ। कोई अपने भाग्य को दोषी ठहराते, कोई ड्रामा को दोषी ठहराते, कोई भगवान को ही दोषी ठहरा देते, कोई फलानी बहन को दोषी ठहरा देते, बड़ी बहन ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, अरे सब कर रहे हैं अपने अपने पार्ट अनुसार, सब ठीक कर रहे हैं। इसलिए उस बात को नॉलेजफुल होकर के फुल स्टॉप लगाओ और बहुत अच्छी संतुष्ट मणि बन करके रहो। संतुष्टता बाबा का संगम युग का वरदान है, ये बहुत बड़ी देन है। और अगर हम अभी नहीं बने तो पूरे कल्प में भी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए ये पक्का करो कि मुझे संतुष्ट मणि बन करके रहना है। उमंग रखो, उत्साह रखो, सेवाएं करो, उसे अलग नहीं हो जाओ, लेकिन बहुत संतुष्टता के साथ हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं अपना अच्छे से अच्छे पार्ट बजाऊं। तो त्याग के लिए अनासक्त वृत्ति, निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव, तपस्या के लिए लगन, एकाग्रता और दृढ़ता, और सेवा के लिए बहुत दया भाव, रहम भाव। जब तक दया और रहम नहीं आएगा तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। बहुत दयालु, कृपालु, बाबा आपने इतना मुझे दिया, इतना कीचड़ से निकाला, इतने दुख दर्द की दुनिया से बचाया, इन आत्माओं को भी मैं कुछ अंजलि दे दूं, बाबा इनको भी कुछ दिला दो। एक रहम दिली का भाव है, दया भाव है, कृपा भाव है, और दूसरा दातापन का भाव है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। कई लोग सेवा करते हैं तो उनकी एक चाहना रहती है, इसकी सेवा करेंगे मदद करेगा। बाबा कहता अरे क्या आत्माओं से चाहना रखते हो, मदद तो बाबा देने वाला बैठा है आपके साथ, तो भूला भंडारी है, उसकी मदद लो। आत्माओं से क्या मांगना है, क्या इच्छा रखनी, ये तो हम सब बाबा के बच्चे दाता हैं और दाता बन करके मुझे देना है। तो देने की भावना है, दया की भावना है, दयालुपन की भावना है, बहुत निर्दोष भावना, सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाए, ये शुभ भावना है। ऐसी भावना वाली आत्माएं सेवाधारी बन करके सुख देती और सुख लेती हैं। आज बाबा ने सेवा का क्या भाव बताया कि अगर इस शरीर के अंदर श्वास है तो ये शरीर चल सकता है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर सेवा है तो ये जीवन है। सेवा हमारे लिए बाबा ने श्वास का महत्व बताया, श्वास की तरह है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए कोई भी प्रकार की सेवा करनी ही है, चाहे मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे कर्म से करो, चाहे संबंध संपर्क में जो आए अपनी विशेषताओं से करो, जो आपकी विशेषताएं वो देख करके सीख जाए। तो इसलिए सेवाधारी बन करके, बाबा भी सेवाधारी बन के आया और हम सब बच्चे उनके समान सेवाधारी हैं। सेवा से बहुत दुआएं मिलती हैं और सेवा का एक बहुत सुंदर अर्थ निकलता है, सेवा माना सुख देना और सुख लेना। अगर कोई भी सेवा डिस्टर्ब कर रही है या डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई हमारे से डिस्टर्ब हो रहा, हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको सेवा नहीं कहा जाता, उस सेवा को छोड़ दो। भले मनसा सेवा करो, शुभ भावनाओं की सेवा करो, कर्मणा द्वारा गुण दान करने की सेवा करो, ऐसे कर्म करो जो आपको लोग फॉलो करने लगे, वो भी सेवा है, सिर्फ ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की सेवा हम सबको दिन रात करनी ही है, निरंतर सेवाधारी, खाते पीते उठते बैठते, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से जो संबंध संपर्क आए उसको ज्ञान का दान, और कर्म से गुणों का दान। तो ऐसे सेवाधारी बन करके हम सबको त्याग और तपस्या का प्रैक्टिकल प्रूफ देना है। हम सब त्यागी और तपस्वी हैं, ऐसे नहीं साधन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सेंटर छोड़ दिया, वो त्याग है, वो त्याग नहीं है। वो बाबा ने दिया है साधन, सेवा यूज करो, लेकिन बुद्धि से अनासक्त भाव से त्याग कर दो। है तो यूज करो, अधिकार नहीं रखो, ममता नहीं रखो, मोह नहीं रखो, लेकिन डिटैच होकर के उन साधनों का प्रयोग करो। ठीक है, ओम शांति। 11:30 बजे
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बाबा दादी दीदी के संग के अनुभव सुनाकर त्याग तपस्या और सेवा की प्रैक्टिकल बातें हमको बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी इन सब युक्तियों को अपने जीवन में लाकर और अपनी तपस्या को पावरफुल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साता जी का।